لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. لعنة الله على آدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ سورہ نساء کا سلسلہ جاری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے وہ 29ویں آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھا جایا کرو، مگر یہ کہ آپسی رضا مندی سے تجارت کا لین دین ہو اور نہ اپنے آپ کو ہلاک کرو. بے شک خدا تم پر بڑا مہربان ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ناحق مال ایک دوسرے کا کھانا اللہ نے منع کرا ہے. ناحق مال کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دینا، کسی پہ ظلم کر کے مال لینا، سود لینا، جوا کھیلنا، اس طرح کے دھوکے کے مال سے اللہ نے منع کرا ہے. لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارت عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے کرو، تجارت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک خدا تم پر بہت مہربان ہے. تو مال اس طرح ناحق مال کھانا حرام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تنبیہ کیا ہے. لیکن اگر تجارت ہے، تجارت میں بھی یہ ہے کہ آپسی رضا مندی سے تجارت ہو، آپسی رضا مندی سے تجارت ہو. کہ ملتا ہے روایتوں میں کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو ایک چیز بیچی. جب بیچی تو رسول اکرم نے پوچھا کہ تیری کیا مرضی ہے اس میں؟ تو کہا کہ میری مرضی بھی آپ نے جو قیمت دی وہی میری مرضی بھی ہے. تو رسول اکرم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ سامنے والی کی مرضی ہونا، سامنے والے کی مرضی ہونا. آقا صاحب اس کو یہیں بند کریں، کیونکہ میں نے شاید نا جو پہلے جب آیت پڑھی تھی تو تکونو بھول گیا تھا میں، تو پھر سے شروع کریں گے، پورا شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟
پھر آپ یوں کریں کہ آپ سورہ پڑھ کے آیت پڑھیں،
سورہ پڑھ، کیونکہ آپ کو وہ خطبہ کرنے ضرورت نہیں. ہاں خطبے میں غلط پڑی، تکون نہیں آیا تھا، اب یاد آیا تکون نہیں آیا، خطبہ پھر سے کرتے ہیں. اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عزيزي محترم، یہ سورہ نساء کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے 29 آیت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک خدا تم پر بڑا مہربان ہے. تو ناحق مال کیا کھانا ہوتا؟ ناحق مال کھانا جوا، یا کسی پہ ظلم کر کے مال لے لینا، کسی کو دھوکہ دینا، یا کسی سے سود لینا، اس طرح کے جو چیٹنگ کے جو ہیں مال، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہے. لیکن کہا کہ ہاں، اگر تم کو کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو تجارت کرو وہ آپسی رضامندی سے. ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک خدا تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ روک رہا ہے ان چیزوں سے. ولا تقتلوا انفسکم، اس کی بھی اصلاح کریں، اس کی بھی تفسیر پڑھی جائے گی ابھی، یہ کیا ہوتی ہے، ہلاک کیا ہوتا ہے. تو روایتوں موجود ہے کہ سرکار نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک چیز بیچی، تو جب اس سے اس کو بیچی تو پوچھا کہ کیا تو اس سے راضی ہے، کیا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا مرضی؟ کہا کہ میری مرضی بھی یہی جو آپ کی مرضی ہے. تو کہا کہ ابھی تجارت صحیح ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک تم ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جاؤ، تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی راضی ہوں. کیا تیری کیا مرضی؟ سکھا رہا رسول اکرم. ہاں، کہا اب تجارت صحیح ہے، کہ تو بھی اس میں راضی ہے. ولا تقتلوا انفسکم سے کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو کہا کہ پوری سوسائٹی ایک ہوتی ہے، اسلام کا آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پوری سوسائٹی ایک ہوتی ہے. آپ کسی کو نقصان دیں گے تو آپ کا بھی اس میں نقصان ہے، پوری سوسائٹی ایک ہے، آپ کا بھی اس میں نقصان ہے. لیکن جو تفاسیر میں بیان ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ سوسائڈ ہے، خودکشی، دوسرا کسی کو خون کرنا ہے. کیونکہ آپ جب خون کرتے ہیں تو آپ نے سوسائٹی کے آدمی کا خون کرا، مطلب اپنے آپ کا خون کرا، آپ نے ہلاک کرا آپ نے آپ کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ یہ چیزیں، یہ میں نے اس سے منع کرا ہے کہ خودکشی کرو یا کسی اور کا قتل کرو، سوسائٹی ایک ہی سوسائٹی ہے. یا اپنے آپ کو ایسی جگہ حالت میں ڈالو کہ آپ پہ کوئی حملہ کر دے، وہ بھی غلط ہے. یا کیسے، جیسے کہ روایتوں میں کہ کفار کے لشکر میں بغیر اجازت کے خود چلے گئے اور گھس گئے وہاں، اور وہاں پر قتل ہو گئے، وہ بھی غلط ہے. بغیر کسی اجازت کے کچھ بھی چلے گئے، بس اپنے آپ کو ہلاک کرا آپ نے، یہ میں میزان پڑھ رہا ہوں. تو وہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے. ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک خدا تم پر مہربان ہے، کہ وہ تم کو روکتا ہے ان چیزوں سے، تم کو روکتا ہے ان چیزوں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے 30 آیت میں، وہ مَن یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ بات خدا کو آسان ہے. تو پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم سے کہی ہے میزان کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا سنا رہا ہے، سزا یہ سنا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا، خودکشی کرے گا یا قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ بات خدا کو آسان ہے. لیکن خدا کی رحمت ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے کہہ دیا ان اللہ کا کانا بکم رحیمہ، کہ بے شک خدا تم پر مہربان ہے، مہربانی اللہ نے یہ کری کہ آپ کو روکا ایسا کرنے سے، اس سے پہلے آپ کو جہنم میں وہ ڈالے، روکا ہے، تنبیہ کری ایسا نہ کر لینا، خودکشی نہ کر لینا، مایوس مت ہو جانا، مایوس نہ ہو جانا، پہلے تنبیہ کریے، پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جس کا ہم نے منع کرا ہے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تم کو عزت کی جگہوں میں داخل کریں گے. دو طرح کے گناہ اللہ نے بتایا, ایک تو بڑا ہے بتایا کہ بڑے گناہ کبائر ما تنہون عنہ جس کا کہ ہم تم کو منع کرتے ہیں اسے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. وہ کون سے گناہ ہے جو بخش دیں گے؟ اس میں اس کی تفسیر میں وہ گناہ کون سے ہوگا جو باقی بچن سیاحت ہی کون سے سیاحت کون سے گناہ کا وہ چھوٹے گناہ ہے گناہ سویا وہ بخش دی جائیں گے. اگر بڑے گناہ سے اجتناب کرا ہے تو اللہ چھوٹے گناہ بخش دے گا. بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بڑے گناہ وہ ہیں گناہ کبیرہ جن کے لیے خدا نے آگ کی سزا رکھی ہے, جن کے لیے خدا نے آگ کی سزا رکھی ہے وہ بڑے گناہ ہیں. اللہ نے خاص آیت نازل کری بڑے گناہ کبیر گناہ کبیرہ کے لیے خاص آیت نازل کری ان کا منع کیا ہے. تو بڑے گناہوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تنبیہ کری خاص منع کرا ہے اور آگ کی سزا رکھی ہے, یہ بڑے گناہ ہیں. تو چھوٹے گناہوں سے اللہ نے معافی کا کیوں کہا ہے؟ کہا کہ بڑے گناہوں سے تم اجتناب کرو گے تو چھوٹے گناہ معاف کر دیں. تو میزان نے بڑی خوبصورت بات کہی, میزان نے کہا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے وہ اس لیے کہا ہے کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ معصوم ہو جائے, گناہ تو ہوں گے. جب گناہ ہوں گے تو اللہ نے امید دلائی ہے, یہ امید کی آیت ہے کہ دیکھو اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے دوسرے گناہ بخشنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہے جس کی بخشش مانگ لی جائے, کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر جس کی بخشش مانگ لی جائے, اور کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے جس کو کہ انسان کیا کرے, اگر کرتا چلے جائے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا, ہو اگر گناہ کبیرہ نہیں رہتا جس کی بخشش ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, جب انسان یہ سوچ لے, اگر یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ سوچ لے گناہ صغیرہ کے بارے میں کہہ رہے میں تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, تو اس کے دل میں ایک سخت بیماری پیدا ہو جاتی ہے, وہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کی, اور وہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا ایک عظیم گناہ بنتا ہے, وہ گناہ کبیرہ ہے کہ ہاں میں چھوٹا گناہ میں کر لوں گا, یہ نہیں سوچتا ہو کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے, ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کوشش انسان کرے کہ گناہ کوئی کرے ہی نہیں, کوشش یہ ہو نیت یہ ہو, تو ہمیشہ توبہ کرتا رہے بندہ. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آیا جو اب آگے کی آئی ہے وہ مرد و عورت کے جو بھی فضائل ہیں ان کے بارے میں آ رہی ہے. بلا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا ويسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. جن چیزوں میں خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی حوس مت کرو, عورتوں کو مردوں کو ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کیا, عورتوں کو ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کیا, اور خدا سے اس کا فضل طلب کرتے رہو, بے شک خدا ہر چیز سے ہر شے سے واقف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو الگ چیز کے لیے بنایا ہے, عورت کو الگ چیز کے لیے بنایا ہے, دونوں کی جو بھی مقامات ہیں اپنے حساب سے ہیں, ایک دوسرے کی حوث نہیں کرنا, ایک دوسرے کی حوث نہیں کرنا. کیا میزا نے بہت خوبصورت بات کری ہے, میزا نے کہا ہے مرد کو اجازت ہے چار شادی کی اجازت ہے, مرد کو وراثت میں سے دگنا حصہ ملتا ہے, عورت کو चार शादी, एक ही शादी की इजाजत है, एक ही मर्द रहेगा उसका, और उसको उसको विरासत में आधा हिस्सा मिलता है। तो ये नहीं कि बैठ के औरतें करती रहे हवस कि हाय मर्द को दत्ता मिल गया, हमको क्या है, हमको क्या है। मीज़ा ने बताया कि अगर इस तरीके से अगर औरतों के अंदर ये मसला पैदा हो जाए कि मर्द को क्यों है तीन दो तीन चार शादी का, तो एक तरह से उसमें जेलसी पैदा होती है, एक एक एक, एक मुश्किल पैदा होती है, और मुश्किल पूरी कम्युनिटी की मुश्किल बन जाती है वो मुश्किल, क्योंकि क्या हवस है ना कि हाय उसको क्यों मिल गया हमको नहीं मिला, आज आप सोसाइटी में जाए वो तोड़ते हैं कितने बैठ जाएंगी कि वाई दे वाई नॉट बी अस। आजकल ये लिबरल सोसाइटी में ही हो गया है, और इसीलिए इतनी जेलसी और एनवीनेस ये हसद फैल चुका है। इसी को अल्लाह सुब्हान तआला मना करा है, इसी को अल्लाह सुब्हान तआला मना करा है कि ये बीमारी फैल ना पाए। आदमी की जो फितरत है, आदमी की जो कुव्वत है, आदमी का जो वो जिस तरीके से अल्लाह ताला उसको बनाया है उस हिसाब से उसकी उसको अलग हक दिए हैं, और औरतों की जो सलाहियत है उसको अलग हक दिए अल्लाह ने, उसके हुकूक अलग हैं। एक तो ये कि दूसरे का जो दिया उसको हवस न करो, और चूँकि इंसानियत होती है कि वो एक्सेल करे, सबसे आगे बढ़ जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला का यसूलुल्लाह मिन फजली, तो खुदा से उसका तलब फजल तलाब कर, फजल तलब करो, यसूलुल्लाह मिन फजली, खुदा से उसका फजल तलाश करो। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहा है कि ये नहीं कि तुम हवस करते बैठो, खुदा से खुद मांगो, अल्लाह तो देने बैठा ना, तो अल्लाह की तरफ चेहरा करो और अल्लाह से फजल यानी दुआएं करो। लेकिन ऐसी दुआ मत करने बैठ जाना कि जिसको किसी को दूसरे को फजल दिया है वो आप लेने बैठ जाएं, आप अपना खुद का फजल तलब करें, आप हसद करें नहीं करें कि नहीं नहीं वो जो दिया वो ही मुझे मिले, नहीं भाई अपना खुद लो ना, आप अपनी दुआएं करें, दूसरों के लिए भी आप अच्छी दुआएं करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला से उसका फजल तलाश करोगे तो खुदा बहुत खुश होता, खुदा बहुत खुश होता, और ये सबसे बड़ी इबादत है खुदा से दुआ करना उसके फजल की। अगली आयत में वली कुल्ली जालना मवालिया मिम्मा तरकन वालदाने वल अकरबून वल्लदीन अक़दत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबहुम इन्नल्लाहा काना अला कुल्ले शैइन शहीदा। माँ बाप या रिश्तेदार जो कोई छोड़ मरे हमने हर एक का वारिस मुकर्रर किया है, और जिन लोगों से तुमने अक़्द लिया उनको भी उनका हिस्सा दे दो, बेशक खुदा हर चीज़ पर शाहिद है, इसका तर्जुमा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि सब के मैंने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, माँ बाप छोड़ के मरे, रिश्तेदार छोड़ के मरे, कुरान में सबकी आयत है, हम ज़्यादातर आयतें पढ़ चुके हैं, हर एक के वारिस मुकर्रर हैं अल्लाह सुब्हान तआला के फरमाता। और जिनसे तुमने अहद लिया है उनको भी उनका हिस्सा दे दो, और खुदा कहता है कि मैं हर चीज़ पर गवाह हूँ। तो रिश्तेदारों में एहले बैत की जो अहादीस हैं उसमें सबसे ज़्यादा करारत में वो है जो के रहम से सबसे पास है, माँ के रहम से जो सबसे पास में उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मीज़ान ने कहा कि वल्लदीना अक़दत ऐमानुकुम से क्या मुराद है कि जिनसे तुमने अहद लिया है उनको भी उनका हिस्सा दे दो। तो मीज़ान ने कहा है कि इससे मुराद शादी की रिश्ते हैं, क्योंकि शादी के अंदर भी आप अहद लेते हैं। तो मियाँ और बीबी के हक़ को खुदावंद करीम ने इस तरीके से कहा वल्लदीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबहुम से मुराद शोहर और بھی اس سے مراد ہے، میزان کی جو تفسیر ہے اس میں بیان کیا گیا. اب یہ آگے کی آیت بڑی سیریس آیت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دھیرے دھیرے پڑھیں گے. ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات وقانتات وحافظ للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فائزهن وهجرهن في المزاج واضربوهن فإن أتيناكم فلا تبغوا إلينا سبيلا إن الله كان علي كبيرا. ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کو اپن دھیرے دھیرے پڑھیں گے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر مسلط کیا ہے. بما فضل بعضهم علی بعض، کیونکہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا اموالهم، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. فالصالحات وقانتات، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کی خدا نے ان کو حفاظت کرنے کا کہا ہے، وہ مرد کی غیر حاضری میں ان کی حفاظت کرتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ جن چیزوں میں خدا نے حفاظت کرنے کا کہا ہے، اپنے مرد کی غیر حاضری میں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں کے بارے میں تمہیں خوف پیدا ہو جائے کہ وہ سرکشی پہ اتر آئی ہیں، تو پہلے تو ان کو زبانی سمجھا، اور اس پہ نہ مانے تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اور اس پہ بھی نہ مانے تو ان کو پیٹو، اور اگر وہ اطاعت کرنے لگے تو ان کو نقصان پہنچانے کی راہ نہ ڈھونڈو. بے شک خدا اعلیٰ اور بزرگ ہے، اس کا ترجمہ ہے. تو خداوند کریم نے مرد کو مسلط کرا ہے، وہ گھر کا لیڈر ہوتا ہے، کیونکہ باس کو خدا نے باس پر فضیلت دی ہے. آدمی کو، مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اس طریق سے دی ہے کہ مرد کے اندر جذبات کم ہوتے ہیں اور سوچنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا، اور اس میں عدل کی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا دماغ، اس کو اللہ نے اس کا جو اس کی نفسیات بنائی، اس طریقے کی بنائی کہ وہ اس میں عدل کی طاقت ہوتی ہے، صبر زیادہ کر پاتا ہے، صبر تحمل، اور اس کے علاوہ وہ مال خرچ کرتا. تو مال خرچ کرتا تو اس وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے گھر کا حاکم بنایا ہے، اس کو مسلط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اطاعت کرتی ہیں، نیک بیویاں اطاعت کرتی ہیں، یعنی ان حکموں کی اطاعت کرتی ہیں. اور جن چیزوں کے خدا نے حفاظت کرنے کا کہا ہے، وہ مرد کی غیر حاضری میں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اب وہ جو نیک بیویاں وہ اطاعت کیا کرتی ہیں؟ پہلے اطاعت پہ آ جائیں، اس کے بعد اپن آگے چلیں گے. اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ نیک بیویاں اطاعت کرتی ہیں. اطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے میاں کی بات سنیں. اطاعت سے میزان پڑھ رہا ہوں میں، 24 گھنٹے میاں ان کی پراپرٹی کو دیکھ سکتی ہیں، ان کے سوشل افیئر جو سماجی چیزیں ان پہ جا سکتی ہیں، اگر وہ جائز ہیں، جائز چیزیں وہ کر سکتی ہیں. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے جو میاں کرے اور میاں سوچ لے کہ اب میں اس کو پورا کنٹرول کروں گا، ایسا نہیں ہے. اس کی بھی اپنے حقوق ہیں، اس کی اپنی پراپرٹی کا کنٹرول ہے، اس کو سوشل لائف ہے اس کی. بس یہ ہے کہ ایسی بات نہ کرے جس سے کہ میاں ناخوش ہو جائے یا جھگڑے پیدا ہوں. میاں کو بھی سمجھنا چاہیے तो मियाँ को भी समझना चाहिए इस बात को। तो इताअत कायम है, फिर इताअत कायम है, ये बात मीज़ा ने समझाई। इताअत है जब मर्द उसके साथ अक्त करता है, उसको मेहर देता है, तो इताअत होती है सोहबत के रिश्तों में। जब जब सोहबत का रिश्ता है तो मर्द की हुक्म को माने, मर्द की ख्वाहिश को पूरा करे, मना ना कर दे, ये इताअत है। और दूसरी इताअत क्या है? दूसरी इताअत क्या है कि उसके पीठ पीछे उसकी माल की हिफाजत करे। तो ये ना कि जो 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 नेक बीबियां इताअत करती हैं, और जिन चीज़ के खुदा ने मर्द के पीठ पीछे हिफाजत का हुक्म दिया, उसकी हिफाजत करती हैं, तो वो क्या है? दो चीज़ें हिफाजत करती हैं, एक तो आबरू अपनी इज्जत उसकी उसकी हिफाजत करती हैं, दूसरी करती हैं माल की हिफाजत। माल की हिफाजत यानी कि मियाँ चले गया और यहाँ लिया क्रेडिट कार्ड और खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं, एक तो आबरू की हिफाजत करेंगी। आबरू की तो आसान है, माल की मुश्किल है। आया तो उधर मियाँ गया क्रेडिट कार्ड पर लगा था, मॉल के चले गए, बेचारे को मियाँ को मुश्किल में डाल दिया, वो गलत, अल्लाह मना करता उसका, अल्लाह मना करता। तो आगे क्या है कि अगर तुमको खौफ पैदा हो जाए कि वो सरकशी पे उतर आई हैं, तो अल्लाह ताला ने तीन चीज़ कही हैं, एक साथ नहीं कही थी, एकदम धीरे धीरे कहा। क्या कहा पहले? उनको समझाओ, समझाओ, फिर कहा अगर नहीं समझे तो उनके साथ सोना तर्क कर दो। मतलब सोना तर्क कर दो मतलब कि ये नहीं कि साथ में नहीं सो, ये उनको हाथ में लगाओ, मतलब साथ में तो सो आप लेकिन हाथ नहीं लगाओ उनको, ताकि उनको तुझ नसीहत हो। अगर उसमें भी राजी नहीं हो तो उनको मारो, लेकिन मारना ऐसा नहीं कि आपने इंजूर कर दिया उसको, ऐसा भी नहीं है भाई, हाँ ऐसा भी नहीं है, मैं तफसील ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपने उसको हलाक कर दिया, गलत है ये। अभी हदीसें पढ़ने वाला हूँ, हदीस आने वाली हैं, वो औरतें भी सुन रही हैं, हदीस आने वाली हैं आपके फेवर में भी। एक दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पहली तो एक ये है कि अस्मा बिनते यजीद जो थी, वो सारी औरतों को भेजा सरकार के पास, सारी औरतों ने मिलकर भेजा और कहा सरकार में आपके, और सरकार अपने असाब के साथ बैठे हुए थे। बड़ी खूबसूरत हदीस है ये, सरकार अपने सारे असाब के साथ बैठे हुए थे और वो आई और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं पूर्व और पश्चिम की सारी औरतों की बात लेके आपके सामने आई हूँ, सब औरतों ने मुझे भेजा है, और मुझे यकीन है कि कोई भी औरत मुझसे ना इत्तेफाक़ी नहीं करेगी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सरकार ने कहा बोलो क्या कहना। तो पूरा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसके लब लुआ भी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सरकार हम आदमी को तो इतना अल्लाह ने हुकूक दिए हैं कि वो जुमे की नमाज़ पढ़े, किसी को तदफीन में चले जाए, हज करने चले जाए, जिहाद करे, और हम औरतें घर में बैठी रहती हैं और बच्चों की देखभाल कर देती हैं, मियाँ की ख्वाहिशों को पूरा करती हैं, उनकी माल की हिफाजत करती हैं, हम सब करती हैं और वो ये सब करते हैं। तो कहा कि हमारा क्या है इसमें सवाब है, हमारा क्या हिस्सा हुआ, तो सब बड़े बड़े काम करते हैं। तो सरकार अपने असहाब की तरफ पलटे और फरमाया, क्या कभी तुमने किसी औरत को इससे बेहतर इस तरीके से मज़हब के बारे में सवाल करते सुना? तो असाब ने कहा सरकार हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई औरत इस तरीके से आपसे बात करने भी आएगी। तो सरकार ने जवाब दिया कि जाओ और सारी औरतों को जाके कह दो कि अगर वो अपने मर्दों के साथ अच्छी तरीके से रहती हैं तो जितना ये मर्द जो सब करते हैं वैसे उतना के उतने तुम्हें सवाब अपने कामों में। सुभान अल्लाह। अल काफी में यह हदीस है जो कि आइमा तहरीन की तरफ से है कि औरत का जिहाद यही है कि अपने शोहर के साथ अच्छी रहे, ये औरत का जिहाद है। अब मैं हदीसें पढ़ूंगा क्योंकि मैंने वो मैं पढ़ चुका था, हदीस आयत पढ़ ली है मैंने, तीन स्टेप वाली पढ़ ली है, तो अब मैं कुछ हदीसें पढ़ूंगा। इमाम अली फरमाते हैं कि औरत तुम्हारे फूल है, तुम्हारी नौकरानी नहीं है, तुम्हारा फूल है, तो नौकरानी मत समझ लेना उसको। सरकार फरमाते हैं रसूल अकरम, औरत एक तरह से गुड़िया की तरह है, जो उसको लेता वो उसको उसको बर्बाद ना कर दे, बर्बाद नहीं कर दे उसको। फिर सरकार फरमाते हैं कि तुम औरत को आगोश में कैसे ले सकते हो जबकि तुमने उसको मार लिया है, कैसे ले सकते हो तुम उसको आगोश में जब तुम उसको मार चुके हो। तो इस्लाम ने तंबीह करा है कि इस तरह से जुल्म करने न बढ़ जाना। इस्लाम एतदाल का मजहब है, इस तरीके से कि रसूल अकरम ने कभी भी अपनी हुकूमत के अंदर किसी औरत को हाकिम ना बनाया, गवर्नर नहीं बनाया, कभी जज नहीं बनाया, कभी जज नहीं बनाया। हालांकि दूसरे इस्लाम इन बात की गवर्नरशिप से और या फौज में या जैसे कि जज बनने से मना करता औरत को, क्योंकि उसके लिए आपकी साइकोलॉजी अलग होना चाहिए जो मर्द की होती, कि सब्र वाला हो, हिम्मत वाला हो, बहादुर हो, अदल हो, जज्बात नहीं हावी आ जाए। लेकिन दूसरी चीज़ों में सरकार ने औरतों को हर जगह रखा, मेडिकल फील्ड, मतलब कि फौज के अंदर जब सरकार जब जाते थे, जब लोग जख्मी होते थे, औरतें मरहम पट्टी करती थी। तो मीज़ान में है कि बाकी सारे जो फील्ड हैं सब खुले औरतों के लिए, टीचिंग फील्ड हो गया, पढ़ाई का हो गया, कितना बड़ा फील्ड, या टेक्निकल फील्ड है, या मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आप जाएँ सब खुली पड़ी हैं आपके लिए। और आपकी सोशल लाइफ में आपको आज़ादी है, ऐसा नहीं कि आपको मर्द लेकर 24 घंटे बैठा है, नहीं नहीं, और मर्द को चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से मिले। सरकार की हदीस है अपने जितने इतने अच्छे, मैं अपनी सोचा साथ रहा कौन रहा है, मैं पढ़ चुका हूँ हदीस कौन रहा है। हमको सरकार से दे सीखना चाहिए कि वो अपनी औरतों के साथ कैसे रहते थे, घर में काम करा करते थे सरकार, या इमाम अली बीबी फातिमा सामने खड़े हो जाया करते थे, ये हमको सीखना चाहिए। एक बेला लेकिन औरतों में चाहिए कि मियाओं के हकों को इज्जत करें, उनको हाकिम माने, ऐसा नहीं सोचे कि अरे यू एंड मी आर इक्वल, यही शैतान का फतूर है, हम दोनों बराबर के हैं। आजकल वैसे ही चला मी एंड यू आर इक्वल, वी हैव इक्वल ओपिनियन, वो गलत है, उसको आप इज्जत दें, उसको घर का लीडर माने। तो शादी चलती है, वो मर्द औरत का गुलामी खुद हो जाए तो बात अलग है, वो भी गलत है कि जो मी भी बोलो सुन, तो वो घर फिर शैताना घर हो जाएगा, फिर तो औरत ना तो ना तो आप खुद अपनी इज्जत करेंगे ना बीवी आपकी इज्जत करेगी, क्योंकि अब आप अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेंगे तो मोहब्बत तो अल्लाह देता ना मियाँ बीवी बीच में। अब शोर ने सोचा मैं बीवी की सुनूंगा, अल्लाह की नहीं सुनूंगा, अब क्या होगा, सोचेगा तो ये कि उसको मोहब्बत मिलेगी नहीं मिलेगी, शैतान मिलेगा, झगड़े हो रहे होंगे, क्योंकि उसने क्या करा, शैतान ने तवक्कुल करा, ये नहीं सोचा कि अल्लाह की बात करके खुद चलाता अपनी, खुद गाइड करता। हालांकि शुरू में कुछ इख्तलाफ होता लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा होता है, एंड रिजल्ट मोहब्बत का होता है, बीवी चाहती है कि मियाँ उस पर हावी हो, उसको रास्ता दिखा, दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, व इन खिफ्तुम शिकाकन बैनिहुमा फबअसु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा व इन युरीदा इस्लाहा वफ़िक अल्लाह बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा। अगर तुमको एक खौफ पैदा हो जाएगा दोनों में अनबन है, यानी मियाँ बीबी में, तो एक मुनसिफ मर्द की तरफ से चुनो मुकर्रर करो और एक मुनसिफ औरत की तरफ से मुकर्रर करो। और अगर तुमने इस्लाह कराने की कोशिश करी, तुमने चाहा कि इस्लाह करा दे, तो अल्लाह भी उनमें मुआफ़क़त पैदा कर देगा, और बेशक खुदा जानने वाला खबरदार है। ये इस्लाम की ब्यूटी है कि ये जो कोर्ट, इस्लामिक कोर्ट अल्लाह ने अजीब बनाई है मियाँ बीवी के झगड़े की, उसमें इस्लामिक कोर्ट में अल्लाह ने घर वालों को रखा है, ये एक मुनसिफ मर्द की तरह से रखो, एक मुनसिफ रखो, कोशिश ये हो कि उनकी फैमिली में से हो, फैमिली में हो तो बेहतर है। ये मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये ख़ास पढ़ रहा हूँ मैं आयतुल्लाह ईमानी की तफसीर में से, ये बात कोशिश हो कि मर्द की फैमिली में से हो, फैमिली में से होगा ना आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, एक दूसरे की इज्जत होती है, बात बाहर भी नहीं जाती है और इस्लाह पैदा होती है। अगर फॉर्मल कोर्ट में चले जाएंगे ना, कोई जान पहचान का नहीं होगा, तो टेंशन बढ़ जाता है और झगड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस मामले के अंदर घर वालों को करा है, क्या कहा है, एक ये जो चीज है ना, जो इसका जो तर्जुमा जो है, फबअसु हकमन मिन अहली व हकमन मिन अहलिया, तो एक मुनसिफ मर्द की तरफ का हो और एक मुनसिफ औरत की तरफ का हो, मिन उनकी तरफ से मतलब उनके खानदान का हो, ये इसकी ब्यूटी है। जब घर वाले होंगे तो इस्लाह होगी, झगड़े नहीं होंगे और बाद लोग जिद पे भी नहीं आएंगे और बाद बाहर भी नहीं जाएंगे। ये अल्लाह की हिकमत है, हिकमत ये इस्लाम की ब्यूटी है भाई। मॉडर्न कोर्ट में ऐसा थोड़ी होता है, आप डिवोर्स के लिए चले जाएँ, इस तरह की नाजुक बातें नहीं होती हैं। यही है, यही चीज़ है कि आप अल्लाह की कोर्ट को पे जाएंगे, अल्लाह की हिकमत को सुनेंगे तो बात साफ होगी। इसलिए आप जाएँ वेस्टर्न वर्ल्ड में डिवोर्स फटफट हो जाती है, शियों में डिवोर्स होना बहुत मुश्किल काम है, इतनी अल्लाह ताला रोके लगाई हैं, तीन तीन तलाक़ें हैं, ये है, लेके आओ मुनसिब, लेके आओ घर वालों को, मुनसिब लेके आओ। अल्लाह चाहता है इस्लाह हो जाए, क्या कहा इसमें, क्या कहा अल्लाह ने, अगर वो इस्लाह कराना चाहेंगे तो खुदा उनमें मोहब्बत मिलाप पैदा कर देगा। इसी भी खूबसूरती सुने आप कि जब मुनसिब बैठेंगे कहेंगे इनकी इस्लाह हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह उस वक़्त उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। मुवाफ़क़त तो खुदा पैदा करता है ना, अल्लाह ने कहा लेके आओ मुनसिब, तुम इस्लाह कराओ, मैं इनके दिलों में मोहब्बत डालूंगा। अभी मॉडर्न कोर्ट में ऐसा थोड़ी होता है, आप मॉडर्न कोर्ट में चले जाएं। इसलिए आजकल मैंने ये देखा कि ट्रेंड क्या हो रहा है, जाके फॉरेन कोर्ट चले जाते हैं डिवोर्स देने, ये नहीं सोचते कि जरा मोमिन है भाई, पहले मुझसे पहले क्या हो, कुछ नहीं झगड़ा होगा, ईगो आ गया चले गए, इसलिए इतने घर टूट रहे हैं। अगली आयत वाबुदुल्लाह है, वाबुदुल्लाह वला तुशिकु कु बिही शैउ व बिल वालदैन एहसानम व बिज़िल क़ुरबा वलयतामा वला मसाकीना वल जारिज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी व साहिब जंबी। वल यबनि सबीली व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला يحب من كان مختالا فخورا اللهم صل على محمد وعلى آله। तो खुदा की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, और वालदेन से और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मोहताजों से और नज़दीकी के पड़ोसियों से और दूर के पड़ोसियों से और पास बैठने वालों से और मुसाफिरों से और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में, सबके साथ एहसान करो, सबके साथ एहसान करो, बेशक खुदा शेखी करने वाले, बेशक खुदा तकब्बुर करने वाले और शेखी करने वाले को दोस्त नहीं रखता है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहा कि सबसे पहले मेरी इबादत खालिस होकर करो, इखलास के साथ मेरी इबादत करो, और मेरे साथ जो शरीक मत बनाओ। शिरकत में सबसे बड़ा नफ्स आता है, नफ्स को मत पे लेके आओ। उसके बाद कहा सबसे बड़ा हक़ वालदेन का कहा, उन्होंने वालदेन साथ हक़ होगा। तो उसके बाद कहा है क़ुरबा, जो कि रहम की मादर के रहम के क़ुरबा जो सबसे ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत। दूसरा मुकाम, तीसरा मुकाम हमेशा यतीम का आया, चौथा मुकाम मोहताज का आया, जो बेचारे गरीब हैं। उसके बाद मुकाम किसका है, नज़दीक के पड़ोसी का। दो पड़ोसी हैं इसमें, दो अल्लाह ने इसमें दो लगे, नज़दीक के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी। पहले नज़दीक के पड़ोसी का ज़्यादा हक़ है, दूर के पड़ोसी का भी हक़ है, लेकिन पहले इनका नाम आया। 40 घर इधर 40 घर उधर, जब जो मिलता है हादिस में रसूल अकरम फरमाते हैं, बोला मुत्तकियान फरमाते हैं हमको डर ये था कि रसूल अकरम ने इतने बताए थे पड़ोसी के हक़ के, हमको डर था कि उनको वारिस भी नहीं बनाते जायदाद का। तो फिर मैं तर्जुमे की तरफ जा रहा हूँ, क्या तर्जुमे तरफ कि नज़दीक का पड़ोसी और दूर का पड़ोसी, उसके बाद जो पास में बैठे वाले हैं पास में बैठने वाले हैं दो लोग हैं जो आपके पास आके दोस्त कंपेनियंस बैठते हैं, वो पास में बैठने वाले हैं। एक और कौन कौन पास में बैठने वाले हैं? जो आपकी जर्नी में आपके साथ हो जाते हैं, वो भी पास में बैठने वाले होते हैं। तो कहा उसको कहते हैं साहिब इब्न जंबी, पास में बैठा था। उसके बाद इब्न सली सबील, जो लोग मुसाफिर हैं, भले पैसा वाला मुसाफिर है लेकिन बेचारा घर से दूर है, उसकी हेल्प कर। उसके बाद कौन? मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे कब्जे में है, कौन? लोंडी गुलाम, उनके साथ भी अच्छे रहो। सबके साथ इंसान अच्छा रहे, ये ज़रूरी है सबके साथ इंसान अच्छा रहे। इन्नल्लाह काना लाशिब मन, इन्नल्लाह लाशिब मन काला मुख्तालन फ़कूरा, खुदा बेशक जो एरोगेंट है, जो तकब्बुर करने वाला, शेखी करने वाला, अल्लाह उसको दोस्त नहीं रखता है। जो जो तकब्बुर वाला होगा ना, वो ये काम नहीं कर सकता, शेखी खोरी काम नहीं कर सकता। इसके लिए इंसान में बहुत खुशू चाहिए इन सब चीज़ों करने के लिए। तकबर वालों के पास कोई बैठता भी नहीं भाई, पास वालों के साथ भी कोई बैठना तक पसंद नहीं करता। अगर आप शेखी करना शुरू कर देंगे, लोग आपके पास उठ के भाग जाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने कहा है, इन याद अल्लदीना यब खलूना वो यामर ना से बिल बुखले, वो यकतुमुना मा आता मिल फदली व आतदना लिल काफरीना अजाबन मुहीना, जो खुद भी बुख करे और लोगों को बुख करने का कहें, और जो खुदा ने अपने फजल दिया उसको छुपा छुपा कर रखें, और खुदा ने कुफ्र करने वालों के लिए जलील करने वाला अजाब रखा है, ये उनके लिए है। ये जो जो कौन है ये लोग? ये लोग हैं अमीर लोग हैं जो बुख्ल करते हैं। वल्लदीना यबखलूना, जो बुख्ल करते हैं, वो यामरुन नास बिल बुख्ले, और लोगों को भी बुख्ल करने का कहते हैं। कैसे कहते हैं? मीज़ा ने कहा कि ये बुख्ल क्यों करते हैं? कहा बुख्ल इसलिए करते हैं कि ये खुद पसंद होते हैं, खुद की शोहरत चाहते हैं, खुद पसंद होते हैं, और इनकी तबीयत में अंदर छुपा हुआ शिर्क होता है, खुदा के साथ अपने आप को रखते हैं, और दूसरों को बुख्ल करने का कहते हैं। मीज़ा ने कहा कोई कहने जाता नहीं कि बुख्ल करो, आपके आमाल आपके ज़बान से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप अमल कर रहे हैं, अगर आप पैसे वाले हैं और आप बुख्ल कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आप भी ना दें। ये है, ये नहीं कि जाके कहता हो, और जो कुछ खुदा ने दिया उसको छुपा छुपा के रखें। ये क्या है? छुपा कैसा रखते हैं? मीज़ा ने बहुत खूबसूरत बात कही, छुपा कैसा रखते हैं? ये जो पैसा वाले लोग होते हैं, अल्लाह ने दिया उनको $1,000,000 और कपड़े पहनेंगे $5 के, कार रखेंगे छोटी, दिखाने को कि हम गरीब हैं, ताकि हमारे पास कोई आए मांगने नहीं आए, हम तो गरीब लोग भाई। ये इस तरह से छुपा के रखते हैं जो खुदा ने फजल दिया, इसलिए कोई आए उनका पीछा नहीं पकड़े कोई। आतत ना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, तो खुदा ने उनको कुफ्र काफिर कहा है, क्योंकि अल्लाह की नेमत का कुफ्र कर रहे हैं, उनके लिए जलील करने वाला अजाब रखा है। वल्लदीना युनफिकून अमवालहुम रिया अन्नास वला यूमिनु बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर वो मैं यकुश शैतान लहू करीनन फसा करीना, जो अपना मार्ग लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वला यूमिनु बिल्लाह है न तो खुदा पे ईमान रखते हैं, वला बिल यौमिल आखिर न रोज़े क़यामत ईमान रखते हैं, और जिसका साथी शैतान हो गया तो बुरा साथी है। ये लोग जो दिखा के जो माल दे रहे हैं, हकीकत में अल्लाह ईमान नहीं रखते ना रोज़े क़यामत ईमान रखते हैं, सिर्फ खुद पसंद है, अपनी शोहरत चाहते हैं, तो इनका साथी शैतान है अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह ने सीधे बात शैतान की कर दी कि उसका साथी शैतान है, पर शैतान का दोस्त हो गया वो सा करीना, वो बुरा साथी है। अब ये आखिरी आयत है ना, ये रोने वाली आयत है, मोमिन रोता है, जो मोमिन है ना रोएगा, ऐसा आयत बड़ी नाजुक आयत है। वो ये आखिरी आयत है आज की, वो माजा अलहिम लव आमनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कान अल्लाह बिहिम अलीमा, उनका क्या नुकसान हो जाता कि वो खुदा पर और रोज़ क़यामत पर ईमान ले आते और जो कुछ हमने दिया उसको खर्च कर देते, और खुदा उनसे खूब वाकिफ़ है। इसमें खुदा ताला ने एक ताज्जुब दिखाया है, अरे खुदा बंदा जो 70 गुना अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो क्या सोचता होगा, जैसे उनका क्या नुकसान हो जाता है अगर खुदा पर रोज़ क़यामत ईमान ले आते, मुझ पर ईमान ले आते, करे जा रहे हैं खर्च लोगों को दिखाने के लिए, अरे मुझ पर ईमान लाते, मैं बेटा हूँ ना मोहब्बत देने, मैं तुम्हारा रब हूं ना, तुम मुझे छोड़कर। देखे अल्लाह ताला को अपन कितनी ईज़ा देते हैं, अल्लाह को हम कितनी ईज़ा देते हैं। वो माजा नहीं लव आमन बिल्लाह वल यौम, रोना, अरे मोमिन रो, इसको क्या हो जाता, उनका क्या नुकसान हो जाता, क्यों खुदा और दाखने ले आते और जो मैंने जो कुछ दिया उसमें खर्च कर देते। वो खुदा उनसे खूब वाकिफ, अरे खर्च करने वाला कौन खर्च करा, जैसा अहले बैत ने खर्च करा किसी ने खर्च नहीं करा। हमने भी आयत पढ़ी थी, ये आयत पढ़ी थी क्या, इसमें आयत में पढ़ा था किस किस पर एहसान करो, वालदेन पे एहसान करो, क़ुरबा पे एहसान करो, पढ़ा था ना अभी आयत, क़ुरबा पे एहसान करो, यतीमों पे एहसान करो, मोहताजों पे एहसान करो, पड़ोसी पे एहसान करो, पास में बैठे वालों पे एहसान करो, मुसाफिरों पे एहसान करो, जो कब्ज़े में उन पे एहसान करो। इमाम हुसैन से कोई बड़ी मिसाल नहीं मिलेगी। वालदेन पे एहसान क्या करा उन्होंने, सरकार फरमाते हैं मैं और अली दोनों तुम्हारे वालदेन हैं, वालिद हम तुम्हारे वालदेन हैं, हम तुम्हारे वालदेन थे। तो जब ही ज़ियारत इमाम हुसैन में पढ़ते हैं कि आप उनके बेटे हैं, आप रसूल अकरम के बेटे हैं, आप इमाम अली के बेटे हैं, वालदेन पे जो एहसान करा, शहादत दे के ये एहसान कभी कायनात नहीं भूलेगी, जो वालदेन पे एहसान करा। फिर क़ुरबा पे एहसान करा, ऐसा क़ुरबा पे एहसान करा कि भांजे भतीजे सब जान छिड़कते थे, भाई जान छिड़कते थे, इमाम हुसैन से कोई मिसाल बेहतर है ही नहीं शायद के लिए, जान छिड़कते। यतीमों पे क्या एहसान करा, यतीम भतीजा, यतीम बच्चों, जब मालूम पड़ा मुस्लिम बिन अखिल शहीद हो गए तो उनकी बच्ची के सर पे हाथ फेरा, ये एहसान यतीमों पर और मोहताजों पर, और किस पे, और किस पे एहसान, साथ में बैठने वालों पे, असहाब पे, साथ में जो उनके साथ चले आए, या वो जो कि जो उनके साथ थे साहबी बिल जम्बी, जो कि जर्नी में साथ हो गए थे, कौन, वहबे कल्बी जर्नी में साथ हो गए थे, तो ऐसे आशिक हो गए जान दे दी, और कौन जो तुम्हारे कब्ज़े में है, जो कब्ज़े में कौन, डोंडी गुलाम, हाय फिजा को देख लें, हाय जोन को देख लें, कि जब शहादत का वक्त आया तो कहा इमाम हुसैन ने कहा ए जोन अब शहादत का वक्त आ गया है, अब तुम चले जाओ, तुम चाहो तो चले जाओ। जोन ने कहा ए मौला आप जब तक तो जिंदगी भर साथ दिया, अब जन्नत में जाने की बात आई तो आप उससे अलग हो रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मेरा गंदा खून आपके खून के साथ मिले। मौला ने कहा जोन मैंने तुझे इजाज़त दी। आपका कैसा पढ़ा गया।